वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता थारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 5 पृष्ठ संख्या 402 सब मैंने निकाल लिया बोलिए क्लेशः अधिकतरः केशः अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ये गतिः दुःखं देहबद्धिः अवाप्यते क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबन्धिरवाप्यते क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबन्धिरवाप्यते क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबन्धिरवाप्यते क्लेशः कष्ट अधिकतरः अत्यधिक तेषां उन अव्यक्त अव्यक्त के प्रति आसक्त अनुरक्त चेतसाम मन वालों का अव्यक्त अव्यक्त की ओर ही निश्चय ही गति ही प्रगति दुःखम दुख के साथ देहवद्धि देहधारी के द्वारा अवाप्यते प्राप्त किया जाता है जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है जो हम धागा लगाकर प्रार्थना निकालिए तो श्लोक फिर से समझेंगे भगवान कह रहे हैं क्लेशो अधिक तरस से शाम क्लेश ज्यादा है उनको किनको क्लेश ज्यादा मिलता है अव्यक्त आसक्त चेतसाम जिनका चित्त निराकार में आसक्त है जिनका चित्त निराकार में आसक्त है उनको क्लेश ज्यादा है ना तो भगवान बात कर रहे हैं निराकारवादियों की जो निराकारवादी है बात नहीं तो जो निराकार में जिनका चित्त आसक्त है उनको क्लेश ज्यादा प्राप्त होता है अव्यक्त निकटर दुखम देह बंधर वापते अव्यक्त की जो गति है वो देहधारियों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है तो भगवान तुलना कर रहे हैं साकारवादी और निराकारवादियों के बीच में जो साकारवादी हैं वो भगवान की पूजा करते हैं भगवान के अर्चन गृह की पूजा करते हैं भगवान की भक्ति करते हैं भगवान को नमस्कार करते हैं और कीर्तन करते हैं प्रार्थना करते हैं भगवान से और कई प्रकार की सेवा करते हैं तो उनके मार्ग में बड़ी सरलता है उनके मार्ग में बहुत सुख है, सुख पूर्वक प्राप्त करते हैं। और यहां पर भगवान कहते हैं दुख पूर्वक प्राप्त करते हैं। जो निराकार मानते हैं भगवान को और मंदिर में नहीं आते, मंदिर में भगवान को प्रणाम नहीं करते, तो उनको भगवान की प्राप्ति होती है लेकिन बहुत दुख उठाना पड़ता है उनको, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद के अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावना मृत रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। तो दो प्रकार के लोग प्रभुपाद बताते हैं। एक निराकारवादी है तो वे क्या कहते हैं, मंदिर में क्यों जाते हो, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में क्यों जाते हो, आप समझे। अगर मंदिर में आते भी हैं तो वे ज्ञान योगी जो है भगवान को सीमित समझ करके कि मंदिर में जो भगवान खड़े हैं ये तो सीमित हैं, तो जो सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर है उससे उसकी तुलना में ये कम महत्वपूर्ण है। मंदिर में जो भगवान है उनको महत्व नहीं देते हैं और प्रणाम नहीं करते हैं, झुकते नहीं हैं भगवान के आगे, है ना। तो उनके लिए भगवान क्या कहते हैं, बहुत कष्ट है, उनको बहुत कष्ट मिलता है, है ना। और प्रणाम हो दुख के समन्वय, अगर भगवान को प्रणाम करें नमस्कार करें कि यही जो है अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और यहां पर खड़े हैं और इतनी कृपा करी है उन्होंने कि अर्चा विग्रह के रूप में भी वो प्रकट हुए हैं मेरे सामने, है उनकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की कृपा देखता है तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान योगी है, जो निराकारवादी है, सब जगह व्याप्त है ना, तो फिर वो मूर्ति, ये तो मूर्ति है, ये जो है भगवान नहीं है, ये तो पत्थर है, ये तो लकड़ी है, लकड़ी के भी अच्छा विग्रह है ना, तो पत्थर लकड़ी मानते हैं, ये भगवान नहीं है, प्रणाम नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान योगी है ये कष्ट पाते हैं, अपना कष्ट बढ़ा लेते हैं भगवान के क्लेशों अधिक तरस, ज्यादा कष्ट अपना बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रार्थना करने की भी भावना नहीं होती है कि अपने को छोटा माने भगवान के सामने और अपने अपराधों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें, ये भी भावना नहीं होती उनकी, इसलिए कष्ट ज्यादा मिलता है। लेकिन जो भक्त हैं उनके अंदर दीनता होती है, ईश्वर मान देशता दैन प्रियवाचा, दीनता होती है भक्त के अंदर, इसलिए उसके कष्ट मिट जाते हैं। जब भक्त ये स्वीकार कर लेता है कि भगवान जो है इतने दयालु हैं कि मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे, अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तो मेरे पापों को मिटाएंगे, मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे, तो उसका रास्ता बड़ा सरल हो जाता है, उसके दुख मिट जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, निराकार है, निर्गुण है, तो उसमें वो ये गुण ही नहीं स्वीकार करता कि भगवान जो है भक्त वत्सल है और दीन दयाल हैं, दीन पर दया करने वाले हैं, तो ना तो वो दीन बनना चाहता है ना भगवान को दीनों पर दया करने वाला स्वीकार करता है, तो क्या होगा, कष्ट बढ़ेगा, है कि नहीं। वो निर्गुण मानता है कि भगवान में कोई गुण ही नहीं, जबकि भगवान में दिव्य गुण है दीनों पर दया करने वाले। अगर भगवान दीन पर दया करने वाले हैं और आप दीन हैं तो फिर क्या, फिर तो कोई कष्ट ही नहीं। तो भगवान जो है ना स्पष्ट कहते हैं 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरी सची। अगर मुझ में चित्त लगाओगे, कृष्ण अगर चित्त लगाओगे तो कृष्ण चित्त लगा, निराकार नहीं, कृष्ण चित्त लगाओ, कृष्ण की जो मुस्कुराहट है ना, कृष्ण की जो मुस्कुराहट है, तो उसको बताया गया कि आपके दुख के जो अश्रु हैं उनका समुद्र सुखा देगी। जो दुख के आंसू आपने बहाए हैं उनका एक समुद्र बन चुका है। कृष्ण मुस्कुराते हैं तो वो समुद्र सूख जाता है, लेकिन ये निराकारवादी इतने अभागे हैं कि कृष्ण की मुस्कुराहट का सुख नहीं लेना चाहते। कृष्ण के जो है जो रूप, कृष्ण का जो गुण है, कृष्ण के गुण है वो स्वीकार नहीं करते। वो क्या कहते हैं, कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो अपने कष्ट और बढ़ाओ। इस प्रकार से अपनी मूर्खता से अपने कष्ट और बढ़ाते हैं। तो ज्ञान योगी कहलाते हैं, इन वास्तव में उनका ज्ञान अधूरा है। वो समझते हैं कि भगवान अगर जो है निराकार हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं तो एक स्थान में सीमित नहीं हो सकते। लेकिन क्यों नहीं हो सकते भगवान एक स्थान में सीमित? अगर भगवान सर्वगुण संपन्न है, अगर भगवान जो है सर्वगुण संपन्न है तो फिर जो है ना वो एक स्थान में सीमित भी क्यों नहीं हो सकते, असीमित होते हैं। किस तरह से कृपा लिखते हैं आगे, यहां पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। हाँ, देहधारी के लिए स्वाभाविक क्यों? क्योंकि देहधारी जीव अपने देह की सेवा करता है, स्वाभाविक है अपने देह की सेवा करता है, जैसे खाना है, सोना है, अपनी सुरक्षा है ना, हर कोई अपने लिए सोचता है। तो अगर इसी प्रकार से भगवान के लिए सोचता है तो उसके लिए बहुत आसान होता है। तो भगवान को भी वो खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, भगवान की सुरक्षा करता है। आपको ठंड लगती है तो भगवान को भी ठंड लगती है, तो भगवान के अर्चन विग्रह को भी गर्म कपड़े पहनाता है भक्त, है कि नहीं? आप जो है स्वच्छ रहना चाहते हैं और सजना चाहते हैं तो भगवान को भी वो स्वच्छ करता है, भगवान को सजाता है, भगवान का श्रृंगार करता है ना। तो क्योंकि आपकी देह की आवश्यकताएं हैं तो उसी प्रकार से आप भगवान भी वो आवश्यकताएं मान करके और आप भगवान की सेवा करते हो तो कितना आसान होता है कि नहीं? आप भूखे हैं तो आपको चिंता होती है कि भगवान भूखे हैं, है ना, तो समय पर भोग लगाना है, भगवान को ठीक समय पर जगाना है, ठीक समय पर सुनाना है, ठीक समय पर भोग लगाना है, है ना। तो एक चिंता उसको पैदा हो जाती है भगवान के लिए, है कि नहीं? गर्मी लग रही है तो भगवान को पंखा होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, तो मंदिर में कूलर लगाते हैं। जाड़े हैं तो आपको जाड़ा लगता है ना, तो भगवान को भी जाड़ा लग रहा है तो हीटर लगाते हैं मंदिर में, है कि नहीं? तो देहधारी के लिए जो है भगवान की जो पूजा है, सेवा है, ये बड़ी स्वाभाविक है। आपको प्यास लगती है तो भगवान को प्यास लगती है, तो भगवान को भी पानी रखते हैं, है कि नहीं? और भगवान भी भक्ति की इस प्रकार की सेवाओं को स्वीकार करते हैं। इसलिए कभी कभी भगवान शिकायत करते हैं कि मुझे ज्यादा गर्म भोजन दिया है तुमने, कभी शिकायत करते हैं मुझे ठंडा भोजन दे दिया है तुमने, भगवान शिकायत करते हैं। कभी कभी भगवान मांगते हैं कि मुझको ये चीज खिलाओ, मुझको वो चीज खिलाओ, है कि नहीं? सनातन गोस्वामी से भगवान कहते हैं, तुम्हारे जो सूखे सूखे टिक्कड़ हैं वे मेरे गले के नीचे नहीं उतरते, थोड़ा नमक तो दे दिया करो। तो इस तरह से भगवान जो है देहधारी की तरह, है ना। तो जैसे आपको जो है कुछ पसंद है, कुछ पसंद नहीं है, उसी प्रकार भगवान को भी कुछ पसंद है, कुछ पसंद नहीं है, है ना। तो भगवान फिर और आपकी सहायता करते हैं जानने में कि भगवान क्या चाहते हैं। और फिर जो भक्त है अपने इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देते हैं, है ना। तो देहधारी के लिए जो है बहुत स्वाभाविक है भगवान की सेवा करना, भगवान को अपने आश्रित मान करके। भगवान भी आश्रित हो जाते हैं भक्ति के। माधवेन्द्रपुरी से भगवान कहते हैं माधवेंद्रपुरी, कई सौ सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जमीन के नीचे दबा हूं, बहुत गर्मी लग रही है, मुझको निकालो। अब देखो भगवान खुद निकल नहीं सकते, जमीन के अंदर दबे हैं, और माधवेंद्रपुरी से कहते हैं कि मैं जमीन के अंदर दबा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कई सौ सालों से, और मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, मुझे निकालो। भगवान कितने आश्रित हैं, और कहने तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। कुछ मुसलमानों के जब आक्रमण था तो जो पुजारी जो मेरी पूजा करता था उसने मुसलमानों के आक्रमण के भय से कि मुझे खंडित कर देंगे, मुझे जमीन की नीचे दबा दिया। तो कई सौ साल हो गए हैं तब जब से मैं दबा हूं जमीन के अंदर से, और मैं गर्मी लग रही मुझे बहुत, निकालो मुझे। और माधवेंद्रपुरी को जो है ना भगवान सपने में ले जाते हैं उस स्थान में, इस स्थान में हूं मैं। वो स्थान इतना बीहर था, इतने कांटे कांटे थे, कई सौ सालों से वो तो बिल्कुल वो हो गया था, कोई जा नहीं सकता। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी जागे तो फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने सपना दिया, और जो स्थान बताया था उस स्थान में तो जा नहीं सकते, तो वो तो सपने में ले गए थे भगवान, सपने के शरीर में ले गए थे कि इस सामने में हूं, दबा हुआ। अब इस शरीर से जा भी नहीं सकते उस स्थान में, तो पास के जो गांव वाले थे उनको बुलाया माधवेंद्रपुरी ने, और कहा कि देखो गोपाल जी दबे हैं यहां पर, ये रास्ता कांटे कांटे हैं, सब साफ करो। तो कुल्हाड़ी लेकर के वहां के जो है जो आदिवासी लोग थे, अशिक्षित थे, उन्होंने रास्ता साफ किया, रास्ता बनाया, कांटे झाड़ झंखाड़ सब काट कूट करके अलग किया, रास्ता बनाया, और माधवीपुरी के कहने के अनुसार उस बिंदु पर खुदाई की जहां सपने में भगवान ने बताया। और जैसे खुदाई की तो कुछ जो ना फुट नीचे जो है एक मनुष्य के आकार का जो है ना भगवान का अर्थ विग्रह मिला। माधवीपुरी ने फिर उनको निकलवाया। देखो तो देहधारी को जैसा गर्मी और ठंड का अनुभव होता है ऐसे भगवान को होता है, और भगवान अपने अंदर वो महसूस करते हैं। जबकि भगवान के लिए कुछ भी ठंड और गर्मी नहीं है, तो भी भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए वो अपने अंदर स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है। फिर 108 जो है ना कलश ठंडे जल से भगवान का स्नान कराया माधवेंद्रपुरी ने, कि कई सौ सालों की गर्मी है तो दूर हो जाए। लेकिन इतने के बाद भी फिर उन्होंने कहा कभी मेरी गर्मी दूर नहीं हुई। कई सौ सालों की गर्मी है मेरे शरीर में, तो तुम्हारे 108 कलश ठंडे पानी का क्या करेंगे। मेरे लिए मलाई चंदन लाओ पूरे शरीर में लगाने के लिए, मलाई चंदन का लेप करो, है ना, 40 किलो चंदन घिस घिस करके मेरे शरीर में लगाओ। 40 किलो चंदन, 40 किलो चंदन घिसते रहो और लगाते रहो मेरे शरीर में। तो फिर माधवेंद्रपुरी भगवान की इस आज्ञा को जान करके पैदल जाते हैं जगन्नाथपुरी, और मलय चंदन लेके आते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है भक्तों के साथ में संबंध बनाते हैं, प्रेम का संबंध बनाते हैं, है ना। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं कि देहधारी की स्वाभाविक भी है क्या भगवान की सेवा करना, स्वाभाविक है। जीव अनादि काल से देहधारी है, सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, है ना। तो जैसे अपना घर है, अपना परिवार है, उसी प्रकार से भगवान को भी जो ना उसमें भक्त शामिल कर लेता है, अपने घर और परिवार में शामिल कर लेता है। तो भगवान को जो है अपना पुत्र मान करके भी भक्त जो है भगवान से संबंध जोड़ता है। कोई भगवान को अपना जो है भाई मान लेकर के भगवान से संबंध जोड़ता है। भगवान को कुछ भी मान लो, भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है ना। तो ये जो है भगवान की इतनी कृपा है, भगवान निराश नहीं करते, जो भी चाहो भगवान को मान लो, अपना पिता, अपना भाई, अपना मित्र, जो कुछ चाहो मानो, और भगवान तैयार है हर चीज में। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है। मतलब अंग्रेजी में प्रभुपाद ने कहा आइडल वर्शिप नहीं है। आइडल वर्शिप का मतलब जानते क्या होता है? वो आइडल होता है जैसे कि उसको बुत बोलते हैं, बुत बोलते हैं, बुत बोलते हैं। तो वो जो है ना, जैसे पार्क में किसका है वो काली काले पत्थर का, लाला लाजपत राय का है ना, महात्मा गांधी का भी है। तो कहीं पर खुले स्थान मतलब इस तरह से बना दिया है,
अम्बेडकर का भी,
हाँ, तो उनका जो है बना दिया, तो साल में एक बार जो है ना उनकी धुलाई वुलाई कर देते हैं, और फिर साल भर जो है उनके सिर में कबूतर बैठ के बीट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के नहीं है ये मूर्ति पूजा है, ये मूर्ति पूजा इस प्रकार की नहीं है, बल्कि क्या बोलते हैं, अर्चा, श्री विग्रह आराधना, श्री विग्रह आराधना, भगवान के श्री विग्रह की आराधना, भगवान की ये जो है ना अर्चा के रूप में भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान है, प्रकट हुए हैं अर्चा विग्रह के रूप में। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है, मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता, परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि चित्र के रूप में भी अगर भगवान की पूजा करें तो भी वो भौतिक नहीं है, तो भगवान जो है भक्त की पूजा स्वीकार करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, चित्र में भी प्रकट हो जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे स्थान में हैं जहां भगवान का अर्चा विग्रह नहीं है, तो आप जो है ना भोग लगा सकते हो, चित्र में भी भोग लगा सकते हो और कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं, है ना, चित्र में भी भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं। आगे यहां पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है, अब ध्यान से सुनिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है, ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। यहां प्रभुपाद जी को उदाहरण दे रहे हैं किस चीज का, पत्र पेटिका, लेटर बॉक्स। तो लेटर बॉक्स जो है, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा सीक्रेट है ना, उसमें हम चिट्ठी डालते हैं और आपकी चिट्ठी पहुंच जाती है, हजारों मील दूर भी पहुंच जाती है आपकी चिट्ठी, है ना। तो उसी प्रकार से जो भगवान के मंदिर हैं, तो भी उसी प्रकार के हैं, मतलब लेटर बॉक्स जैसे हैं। तो भगवान अपने धाम में है, भगवान अपने धाम में है, और लेटर बॉक्स में आपने चिट्ठी डाली तो आप जो भी पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो वहां तक पहुंच जाता है, है ना। तो इस तरह से, लेकिन ये जो लेटर बॉक्स है, ये मतलब ऐसे जड़ वस्तु नहीं है, जैसे कि वो जो लेटर बॉक्स होता है वो तो जड़ है, लेकिन यहां भगवान का साक्षात अवतार हुआ है। एक दृष्टि से समझाने के लिए प्रभुपाद ने ये तुलना की है लेटर बॉक्स से, फिर भी पूरी पूरी तरह से लेटर बॉक्स आप नहीं कह सकते हैं। क्योंकि लेटर बॉक्स अलग है और वो व्यक्ति अलग है जिसको आप चिट्ठी भेज रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो लेटर बॉक्स है ये स्वयं भगवान जो है अपने को प्रकट करते हैं हर्षा विग्रह के रूप में, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। ये सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्ति रस मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चन विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। कितना अच्छा प्रभु है। तो आप खुद ही अपने लिए कष्ट पैदा करते हो, क्यों? क्योंकि जो भक्त है वो क्या करता है, भगवान को नमस्कार करता है। लेकिन जो निराकारवादी है वो भगवान को कभी नमस्कार नहीं करता है, वो भगवान को नमस्कार नहीं करता है। तो फिर समस्या बन जाती है कि नहीं। जैसे कि हमने कहा प्रणाम हो दुख के समनस, भागवत का एक श्लोक है, तो उनको प्रणाम करने से आपके दुख दूर हो जाते हैं भगवान को प्रणाम करने। लेकिन वे भगवान को प्रणाम नहीं करते निराकारवादी, क्यों प्रणाम नहीं करते? क्योंकि कोई रूप ही नहीं। आप सुने ना, भगवान का जब रूप नहीं मानते हैं तो फिर भगवान को प्रणाम नहीं करते, है ना। और यह है भगवान की महिमा का श्रवण करता है भक्त, भगवान की महिमा अनंत है, जितनी श्रवण करो कभी समाप्त नहीं होती भगवान की महिमा, है ना। लेकिन वो भगवान की महिमा नहीं श्रवण कर सकता, क्यों? हाँ, क्योंकि कोई रूप ही नहीं, कोई गुण ही नहीं, तो इसलिए उसका कष्ट बढ़ जाता है। और जो भक्त है वो भगवान को भोग लगा करके भगवान का जो उच्चिष्ट है प्रसाद है वो खाता है, है ना। जो निराकारवादी है वो भगवान को भोग भी नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि उनका रूप ही नहीं है, उनका मुंह ही नहीं है, तो खाएंगे कैसे? भगवान का वो क्या कहता है कि ना हाथ है ना पैर है ना मुंह है भगवान के, ना भगवान खाते हैं ना देखते हैं ना सुनते हैं, है ना। तो इस तरह से वो फिर भगवान को भोग नहीं लगा रहे, जबकि भक्त जो है भगवान का भोग लगा करके बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाता है, आनंद लेता है, है ना। प्रभुपाद जी कि भी लोग इतना तकलीफ उठाते हैं, है ना, मुक्ति पाने के लिए, लेकिन मैं तो एक गुलाब जामुन खाऊंगा और भगवान के धाम में जाऊंगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना। तो जो भक्त हैं तो वो भगवान को अच्छा भोजन बना करके भोग लगाते हैं और फिर उनको खाने को मिलता है, क्योंकि जैसा अच्छा अच्छा भोजन मालिक खाता है तो नौकर को फिर बाद में मिलता ही है कि नहीं। इसलिए भक्तों को जो ना अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं, जबकि निराकारवादियों को खाली रूखी सूखी रूखा सूखा भोजन मिलता है, तपस्या करनी पड़ती है ना। तो इसलिए कष्ट मिलता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उनको कष्ट मिलता है। और हाँ, तो ये सब जो ना जो कार्य हैं ये भक्ति में बहुत आसान हो जाते हैं। तो प्रोपल के हैं, किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहां ये कहा गया है यदि अंततः भगवान के शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं, तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतः यहां पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। हाँ, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, इसमें बहुत अच्छा बताया गया है, तेषाम केसर एव शिष्यते नान्यथा स्फुरतु सावघातिनाम, है ना, केसर एव शिष्यते, श्रेयाश्रितिम भक्ति मुदस्यते वो, श्रेयाश्रितिम भक्ति मुदस्यते वो, क्लिशंत ये केवल बोध लब्ध है, तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूल तु सावघातिनाम। तो जैसे यहां पर भगवान के क्लेश, तो भागवत में बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि श्रेयाश्रितिम भक्ति मुदस्यते वो, आपकी जो है कल्याणकारी जो भक्ति है उसको छोड़ करके क्लिशंत ये केवल बोध लब्ध है, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्लेश उठाते हैं, यानी भक्ति के बिना जो ज्ञान है, भक्ति के बिना जो है केवल ज्ञान, भक्ति के बिना केवल ज्ञान का मतलब क्या है, कि हम जो है भगवान है या हम भगवान बन जाएंगे।